लास्ट टू लास्ट संडे हमने जो नौवां अध्याय शुरू किया था भगवद गीता का, राज विद्या योग, उसमें एक श्लोक में ये बताया गया था अट्रैक्शन प्रिंसिपल जो मेल एंड फीमेल एनर्जीज का होता है. तो वो मेरे पास प्रश्न आया था, समझ में पूरी तरह से नहीं आया. असल में बात ये हो रही थी उस श्लोक के हिसाब से कि हमारा जो अट्रैक्शन होता है, एक मैग्नेटिक फोर्स हर समय काम करती है इस धरती पर, एक ऊर्जा काम कर रही है जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं. हम सब ने सुना भी है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, और हम सबको ये भी पता है कि जैसे कोई मैग्नेट होता है तो वो अपनी तरफ जो लोहे के कीले या लोहे का सामान होता है उनको अट्रैक्ट करता है. वो क्या प्रिंसिपल है, क्या है कि चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं? तो उसका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव नकारात्मक और सकारात्मक से मतलब नहीं है, ये एनर्जीज हैं, ये यिन एंड यांग है. जिनको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता होगा उसमें भी होगा, एक हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है. मैग्नेट का भी, हर मैग्नेट में एक नेगेटिव साइड होती है, एक पॉजिटिव साइड होती है. तो अगर हम दो मैग्नेट्स को भी पास में रखते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव को लेके आएंगे तो वह रिपेल करते हैं. तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स का जो भी कॉम्बिनेशन होता है उसके हिसाब से अट्रैक्शन होता है. चाहे हम ग्रेविटी की बात करें कि जो हम आकर्षण है इसका, धरती का, जो नीचे खींच लेता है चीज़ों को, ऐसे ही एक अट्रैक्शन है जो चीज़ों की तरफ हमारा होता है, एक दूसरे की तरफ. जैसे एक स्त्री और पुरुष का, मतलब अगर हम बात करें सिर्फ मेल एंड फीमेल, अब मैं यहाँ पे मनुष्य की बात कर रही हूँ कि मनुष्य जाति में अगर हम बोले मेल फीमेल, उनका जो अट्रैक्शन होता है एक दूसरे की तरफ, जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सेक्सुअल अट्रैक्शन है, वहाँ पे भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है उन दोनों के बीच में. तो इसको ओशो ने जब एक्सप्लेन किया तो उन्होंने चार तरह के इसी अट्रैक्शन को चार पार्ट्स में डिवाइड किया. तो उन्होंने पहला बोला कि जो फर्स्ट अट्रैक्शन होता है वो होता है आपका पदार्थ की तरफ. मतलब अगर आपको धन अट्रैक्ट कर रहा है, अगर आपको पद अट्रैक्ट कर रहा है, अगर चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं, जो कि ज़्यादातर लोगों के साथ होता है, तो वहाँ पर इनफैक्ट वो एक और चीज़ बोलते हैं कि सपोज़ अगर तुम धन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो तो धन वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, और तुम अट्रैक्ट हो रहे हो तो तुम नेगेटिव चार्ज हुए. और एक और वो बोलते हैं कि धन हो गया मैग्नेट और तुम हो गए लोहे का कील जो अट्रैक्ट हो रहा है उस मैग्नेट की तरफ. सोच के देखिए, क्योंकि धन आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता. आप सोच के देखो, क्या पैसे को आपसे कोई अट्रैक्शन है कि मुझे इनके पास होना है, या ज़मीन को आपसे अट्रैक्शन है, या ज्वेलरी को आपसे अट्रैक्शन है, सोने को आपसे अट्रैक्शन है? नहीं, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो. तो जब भी आप अट्रैक्ट होते हो, इसका मतलब जो दूसरी जो चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है, हम उसको बोल देते हैं मेल प्रिंसिपल, ओके? और जो अट्रैक्ट हो रहा है उसको बोल देते हैं फीमेल प्रिंसिपल. तो पहला अट्रैक्शन होता है पदार्थ की तरफ. फिर उसके ऊपर एक और जो आकर्षण होता है वो होता है दो शरीरों का, जहाँ पर थोड़ा एक लेवल बढ़ गया है हम बोलेंगे, तो जैसे मेल और फीमेल. लेकिन यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बॉडी का अट्रैक्शन हो रहा है मेल और फीमेल के बीच में. फिर उसके ऊपर जो अट्रैक्शन होता है वो बोलते हैं, वो होता है मन का अट्रैक्शन, कि आपको किसी का मन बहुत भाता है. हम बोलते हैं ना कि मुझे हृदय से उससे, उसके गुण बोलेंगे हम यहाँ पे. मन की भी जब बात कर सकते हैं तो हम एक गुण बोल सकते हैं कि उसके गुणों की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं किसी की तरफ. और जो आखिरी अट्रैक्शन होता है वो होता है आत्मन की तरफ. तो पहला अट्रैक्शन पदार्थ, पदार्थ के बाद शरीर, शरीर के बाद हृदय, और हृदय के बाद आत्मन. और यहाँ पर जो आत्मन है वो हम बोलेंगे जैसे परमात्मा की तरफ. अगर जो भक्ति वाले हैं वो ये बोल सकते हैं हमें परमात्मा की तरफ, या फिर गुरु की तरफ, या फिर उस अस्तित्व की तरफ. और जब तक असल में हम अस्तित्व को ना पालें तब तक हमें एक फुलफिलमेंट, एक पूर्णता का एहसास होता ही नहीं है. तो जब हम पदार्थ की तरफ भी एक तरह से अट्रैक्ट हो रहे हैं, हमारा अट्रैक्शन वहीं पर है, आत्मन की तरफ है, लेकिन हमें पता नहीं है. अभी हमें, हम पदार्थ में ही अटक जाते हैं, उससे आगे हमारी आँख जाती ही नहीं है, या शरीर के आगे हमारी आँख जाती ही नहीं है. और वो जो आत्मन है उसको यहाँ पर ये भी बोला गया है कि जो यहाँ पे कृष्ण का नाम अगर हम दें तो वो अस्तित्व जो है, बस वो एक पुरुष है, और जो प्रकृति है वो हो जाती है स्त्री. और हम सब क्या हैं, हम प्रकृति में हैं, हम प्रकृति के ही खिलौने बोल सकते हैं, प्रकृति का रूप है. इसलिए हमारा अट्रैक्शन एक पॉइंट पे उस आत्मन की तरफ हो जाता है. तो ये एनर्जीज हैं। तो जो अट्रैक्ट हो रहा है वो हो गया स्त्री, और जो अट्रैक्ट कर रहा है वो हो गया पुरुष। ये यहाँ पर बताया गया है, और मेनली यही बताने के लिए कि हम सब आत्मन, इवेंचुअली आत्मन की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। दूसरा प्रश्न जो आया था कि हमारे ही क्रिया योगीज में से ही हैं, कि क्या होता है घर में कोई परेशानी होती है तो एक आदत होती है कि आप एक पंडित के पास, एक एस्ट्रोलॉजर के पास चले ही जाते हैं पता लगाने। ये शायद हमारी कंडीशनिंग ही है, सोसाइटी हमें यही सब सिखाती है, और हमारा आसपास का माहौल कैसा होता है। तो उनको भी किसी ने बता दिया कि आपके बेटे पे किसी ने कुछ काला जादू कर दिया है, तो ऑब्वियसली माँ होने के नाते डर लगने लग जाता है आपको कि अरे मेरे बेटे को किसी ने ऐसा कुछ कर दिया, कुछ हो गया, उसका बिहेवियर है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। ठीक है, सोसाइटी में ये सब चलता है और ये चलता रहने वाला है, इसका कोई एंड नहीं है, हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन जो भी जब हम अध्यात्म में आ जाते हैं तो हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठना है, हमें इन चीज़ों में घुसना ही नहीं है। मैं तो ये बोलूँगी अगर आप अध्यात्म में हो, आपको एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत भी क्या पड़ी है कि आप जाके वहाँ पे लो। इसी से पता लग रहा है कि कहीं कुछ अभी भी दिमाग में है कि शायद वो पंडित हमें कुछ बता देगा, हम कुछ सही कर लें। हम माया को, यहाँ पे जो भी चल रहा है उसको सही करने में लगे हुए हैं, और अगर उसको सही करने में लगेंगे तो प्रगति ज़रूर अध्यात्म की तरफ कम ही होने वाली है, धीरे प्रगति होगी जितना ज़्यादा जाओगे इन चीज़ों में। मुझे तो याद नहीं आता, पिछले शिवी जो थी वो हमारी एस्ट्रोलॉजर, वो तो फ्रेंड थी, वो भी कभी कुछ बताती थी तो आप, मैंने लिखा भी हुआ है, मैं इतना ध्यान नहीं देती थी, वो अपने आप ही कुछ बताती थी, कभी नहीं गए कि कुछ पूछने करने कि यहाँ पे करें। अब जो है वो मंजूर है, ये होना चाहिए। एक आध्यात्मिक जो भी है साधक, उसका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि हाँ जो है वो मंजूर है। अच्छा ठीक है, किसी ने काला जादू कर दिया जो है, बस आप अपनी अध्यात्म से उसके लिए यही बोलो कि इसकी आध्यात्मिक प्रगति हो, बस। क्यों इन चीज़ों में फंसोगे, इनका कोई एंड ही नहीं है। और क्या है ये भी नहीं पता, कुछ है कि नहीं है, पंडितों को भी अपना घर चलाना है। और आप जब भी देखो किसी के पास भी अगर आप जाओगे पूछने के लिए, वो आपको खाली हाथ नहीं भेजेगा, वो आपको कुछ ना कुछ तो बता ही देगा कि आप ऐसे ये कर लो, ऐसा हुआ है, आप ये वाला उपाय कर लो, ये वाली अंगूठी पहन लो, ये वाली पूजा करा लो। इन चीज़ों का तो कोई एंड ही नहीं है, फिर अध्यात्म का क्या फ़ायदा हुआ अगर अध्यात्म में आने के बाद भी आप यही सब चीज़ें कर रहे हैं तो। तीसरा जो सवाल था कि ये जो बाबा खोल गोल और सिस विस बनाए हैं, इनका पर्पस क्या है? तो कोई पर्पस नहीं है, देर इज़ नो पर्पस, ना कोई मीनिंग है ना पर्पस है, बस खेल में। और यही सब जो ज्ञान है, यही सब जो अध्यात्म है, ये जो चीज़ें हैं, एक अलग तरह से एक्सप्रेस करने की कोशिश की गई है। बाबा खोल गोल का थोड़ा एक बाबा स्टाइल में, एक थोड़ा जो सिंपल देहाती लैंग्वेज होती है उसमें करने के लिए, और सिस विज का थोड़ा न्यू जनरेशन की जो लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में वही चीज़ बताने के लिए। क्योंकि क्या होता है, देखो ज्ञान तो एक ही है, जो अध्यात्म में जो ज्ञान मिलता है वो बदला नहीं है, वो हज़ारों लाखों साल पहले भी वही था और हज़ार लाख साल भी वही रहेगा, कुछ भी नहीं बदलने वाला उसमें। लेकिन क्या बदल जाता है, उसका सिर्फ एक्सप्रेशन, उसकी लैंग्वेज बदल जाती है कि वो किस भाषा में बताया जाता है। जैसे वही ज्ञान जो हिंदी बोलने वाला है उसको हिंदी में बताया जाएगा, अगर आपकी भाषा हिंदी है तो आपको चाइनीज़ में नहीं बताया जाएगा, और वही ज्ञान अगर एक जापनीज़ है तो उसको जापनीज़ में बताया जाएगा। तो एक लैंग्वेज होती है कि हम किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और दूसरी लैंग्वेज होती है उस भाषा में भी कौन सी भाषा। जैसे आपको पता है कि अगर हम किसी बुज़ुर्ग से बात करते हैं तो उनको कौन सी भाषा, कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा कि उनके लिए वो मैटर करेगा, और यही जो नई जनरेशन आ रही है उनको कौन से वाले शब्द अच्छे लगेंगे कि उनको वो बात समझ में आएगी। तो अगर आपने सिस्टर्स का देखा हो तो उसमें जेंजी की भाषा का प्रयोग किया गया है वही सब चीज़ बताने के लिए, और ऐसा कोई एक्स्ट्रा स्पेसिफिक स्पेशल पर्पस नहीं है, बस ज्ञान का एक्सप्रेशन हो रहा है अलग अलग तरीकों से। चौथा क्वेश्चन जो आया था, एक्सप्लेन आर्ट ऑफ लर्निंग, अनलर्निंग एंड रीलर्निंग। बहुत ही अच्छा सवाल है। वैसे तो ये ज़िंदगी में ही बड़ा ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी है तीनों चीज़ें, लेकिन जब हम अध्यात्म में आ जाते हैं तो अध्यात्म में अनलर्निंग से शुरू होता है। देखो ज़िंदगी में पहले क्या करना होता है, पहले आपको चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारे अनुभव बदलते हैं, जैसे जैसे हम नई चीज़ें सीखते हैं, हमें उन चीज़ों को छोड़ना भी पड़ता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने जो एक चीज़ बचपन में सीख ली थी हमें ज़िंदगी भर उसी का ही पिटारा लेके चलना है, उसी को फॉलो करना है। और कई बार इसकी वजह से भी हमारी लाइफ बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है या हमारी लाइफ में परेशानियाँ आ जाती हैं, क्योंकि हमने जो भी सीखा होता है कुछ बचपन में हमारे पेरेंट्स ने हमें चीज़ें बोली होती हैं। जैसे एक बात बताओ, सभी माएँ ये करती हैं और सभी ने अपने शायद पेरेंट्स से ये सुना होगा कि छोटे थे आप खाना नहीं खा रहे हो तो वो बोल रहे हैं अरे बेटा खाना नहीं खाओगे तो रात में राक्षस आ जाएगा या पुलिस आ जाएगी, या छोटे बच्चे को डराया जाता है। आजकल तो नहीं करते हैं मेरे ख्याल से मोस्टली पेरेंट्स, लेकिन पुराने काफ़ी समय में ये होता था। तो क्या आप ज़िंदगी भर यही सोचते रहते हो? तो वो लर्निंग थी, उस समय आपको वो डर डाला गया ये सिखाने के लिए। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो तो आपको पता है ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ सिखाने के लिए था, उसका कोई मीनिंग नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें बोलते हैं, या जब भी कोई बच्चा जानना चाहता है छोटा कि अरे मम्मी तुम्हारे ये बेबी कहाँ से आया तुम्हारे पेट में, तो कोई प्रोसेस नहीं बताता है। वो बोलते हैं अरे एक चिड़िया दे गई थी या भगवान जी दे गए या डॉक्टर ने दिया, कुछ भी ऐसा बोल देते हैं। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो सीख जाता है। तो मतलब जो आपने सीखा उसको अनलर्न करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप अनलर्न नहीं करोगे तो वो चीज़ें आपके लिए ऑब्स्टिकल्स बन जाएंगी आपकी लाइफ में। और फिर अनलर्न करने के बाद अब आपको नया कुछ और सीखना होगा कि अच्छा अब क्या है और क्या है, तो आप वो सीखते हो। अध्यात्म में भी जैसे हमारी जो जर्नी होती है, अगर मैं सिर्फ क्रिया और आगे की वो बात करूं, तो जब हम एक शुरू करते हैं अपना कोई भी योग मार्ग, जैसे यहाँ पे हम क्रिया योग का मार्ग लेते हैं, क्रिया योग के मार्ग में अनुभवों का बहुत महत्व है, क्योंकि उन अनुभवों से आपको ये पता लगता है कि साधक की प्रगति कैसी चल रही है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी एनर्जी को, आपकी ऊर्जा को ऊपर की तरफ लेके जाया जा रहा है। योर एनर्जी इज़ बीइंग मूव्ड अपवर्ड्स। तो वो एनर्जी कहाँ तक पहुँची, तो ये जो अनुभव होते हैं किसी भी चीज़ के, चाहे कुछ सुनाई देने के, चाहे कुछ दिखाई देने के, चाहे कुछ फील होने के, मतलब जो हमारी पांच इंद्रियां नहीं पकड़ सकती, जब वो अनुभव होने लगते हैं, उन अनुभवों से साधक की प्रगति कहाँ तक हुई है, वो किस लेवल तक पहुँचा है, ये चीज़ें पता लगती है। अब मैं यहाँ पे एक और डिस्क्लेमर दे दूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको कोई भी अनुभव नहीं हुआ उनकी प्रगति नहीं हुई है, ओके, तो ये मत सोचिएगा। पर ये जो है माइलस्टोन्स होते हैं, इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो साधक को भी समझ में आने लग जाता है कि हाँ मेरी प्रगति हो रही है, कुछ एक नया एक्सपीरियंस होता है। जैसे एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, जब वो एग्ज़ाम देता है और उसको वो फर्स्ट आ जाता है क्लास में, या उसको टीचर बहुत अप्रिशिएट करती है, तो उसको लगता है हाँ मैं ठीक से पढ़ाई कर रहा हूँ, मतलब मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, या कोई रिवॉर्ड मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही जब यहाँ पर भी कोई ऐसा अनुभव होता है तो साधक को मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उसको आगे मोटिवेट होता है साधना करने के लिए। और गुरु को भी पता लगता है कि इसकी प्रगति सही से चल रही है, गुरु जान पाता है इस चीज़ को। पर एक समय इसमें भी ऐसा आता है, एक समय कि आपको उन अनुभवों को भी छोड़ना पड़ता है। तो फिर क्या हुआ, पहले गुरु आपको शुरू में जब आपको कोई अनुभव होगा तो बोलेगा अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छे, लेकिन एक समय आएगा जब वो बोलेगा, आप बहुत बड़ा सा अनुभव बताओगे गुरु पर, वो बोलेगा अरे कुछ नहीं है बेकार है छोड़ दो उसको। तो अब वो जो लर्निंग की आपने उसको अनलर्न करना पड़ेगा और फिर रीलर्न करना पड़ेगा। रीलर्न क्या करना पड़ेगा कि अच्छा अगर ये अनुभव कुछ नहीं है तो क्या है, फिर क्या है, मैं क्या ढूंढ रहा था, मेरे को तो ये लगा कि अनुभव ही सब कुछ है। जैसा मेरी कई साधकों से बात हुई है और हम लोगों ने यही बात कर रहे थे कि जब आपको कुछ एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं, जब आपको ये शरीर का अनुभव नहीं होता और अशरीरी अनुभव होने लगते हैं, तो एक साधक को क्या लगता है कि वो असली है। और ये मेरे साथ भी हो चुका है कि ऐसा लगता है कि ये जो दुनिया है, जो हम फिज़िकल वर्ल्ड में रह रहे हैं, ये नकली है और वो जो एस्ट्रल वाली है वो असली चीज़ है। लेकिन और वो आप कुछ समय रहते हो उसके अंदर, लेकिन इसीलिए गुरु चाहिए ये बताने के लिए कि नहीं वो भी छोड़ देना है, वो भी असली चीज़ नहीं है, असली कुछ और है। तो आपको रीलर्न करना पड़ेगा। और अध्यात्म में तो मैंने क्या बोला, अनलर्निंग से शुरू करना पड़ता है, क्योंकि लर्निंग तो पहले ही आपकी बहुत ज़्यादा हुई हुई है, बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग हुई हुई है। इनफैक्ट अगर वो लर्निंग इतनी ना हुई होती तो कुछ नहीं करना पड़ता, ना अनलर्निंग ना रीलर्निंग, सीधा आपको ज्ञान हो सकता था। तो जो बिल्कुल खाली होते हैं, जो इनोसेंट होते हैं, उनको अध्यात्म में बढ़ना बहुत आसान होता है, बजाय उनके जो बहुत ज़्यादा पंडित हो जाते हैं। पंडित से मतलब है जिन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें कर ली हैं, बहुत ज़्यादा शास्त्र पढ़ लिए हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग में आइडियाज़ बना लिए हैं, ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, हर जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। तो उनको सबसे पहले अनलर्निंग करानी होती है, और वो अनलर्निंग भी उनकी तभी करा सकते हैं अगर वो रेडी हों करवाने के लिए। मोस्टली लोग रेडी भी नहीं होते, क्योंकि वो ही उनकी आइडेंटिटी बन जाती है। तो एक कोई इंसान है जिसने सोसाइटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की हुई है, बिज़नेस कैसे बढ़ता है, कंस्ट्रक्शन में है तो क्या करना होता है, अगर आप फार्मास्यूटिकल फील्ड में हो तो क्या करना होता है, आप स्पेस वाले उसमें हो तो क्या करना होता है अपने एरिया में, और उनको लगता है कि वो बहुत बहुत इंटेलिजेंट और बहुत अच्छे हैं। फिर आ जाते हैं स्पिरिचुअल, जो अपने आप को सोचते हैं हम बड़े स्पिरिचुअल हैं, वो क्या करते हैं, वो सारे शास्त्रों का ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं, हर मार्ग का ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं, हर गुरु का ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं। और मेमोरी शार्प होना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अगर आपकी मेमोरी शार्प है तो उसमें जितना सामान इकट्ठा, तो वो वहाँ पर आइडेंटिफाइड हो जाता है और लगता है कि हम बड़े स्पिरिचुअल हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने से कोई स्पिरिचुअल नहीं हो जाता है, अनलर्निंग कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए बात फिर से आती है कि क्यों गुरु की ज़रूरत पड़ती है, और वो भी एक लाइव गुरु की, वो जो कि आपको डंडा मार के बता सके कि ये सब तुमने कचरा इकट्ठा किया हुआ है, और वो तभी आपको डंडा मार पाएगा। यहाँ पर आपका सहयोग देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेडी नहीं हो डंडा मरवाने के लिए, अगर आप रेडी नहीं हो गुरु पे इतना ट्रस्ट करने के लिए, तो वो कैसे मारेगा? वो नहीं मारेगा, आपकी मर्ज़ी के बिना नहीं मारता। तो यहीं पे एक आता है कि क्या रिलेशनशिप है आपका अपने गुरु के साथ, और उस रिलेशनशिप के बेसिस पे ही ये होता है। तो गुरु इंतज़ार करता है, जब उसको लगता है कि हाँ ये साधक अब मेरे डंडा मारने से इसको फ़ायदा होगा, तभी वो मारता है। और बहुत सारे ऐसे आते हैं जो उसको भी पता होता है ये बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, इन्होंने कुछ करना नहीं है, तो ना वो डंडा मारता है, वो आके अपना कुछ कुछ बताते रहते हैं, हमें ये पता है, हमें ये आता है, हमें वो हुआ है। गुरु भी बोलते हैं हाँ हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, कुछ फ़ायदा नहीं है उनको कुछ। अगर उल्टा बोला जाए तो उनके समझ में तो कभी भी नहीं आएगा, वो चीज़ जाती ही नहीं है अंदर, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस होता है कि जो मैंने जान लिया है, मुझे पता है, वही सत्य है, तो वो नहीं होता है। तो इसीलिए बार बार मैं ये बात करते हैं, सभी गुरु यही बात करते हैं कि आपको एक गुरु की, एक लाइव गुरु की बहुत ज़रूरत होती है, और फिर आप तभी बनाइए जब आपको विश्वास हो जाए। उससे पहले मत करिए, पहले आप आराम से चेक कर लीजिए अच्छी तरह पूरा चेक करके, लेकिन एक बार जब आप बना लें फिर आप डंडा खाने के लिए रेडी रहो, तो आपकी अनलर्निंग होगी। क्योंकि हमें रियलाइज़ ही नहीं होता, हम ऐसी ऐसी चीज़ों को पकड़ लेते हैं और इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमें लगता ही नहीं किसी भी एंगल से कि ये गलत भी हो सकता है, कि हम जो सोच रहे हैं वो गलत है, बिल्कुल नहीं लगता है। और अगर कोई उसको गलत बोले तो हमें कभी ये नहीं लगता कि मैं गलत हूँ, हमें लगता है कि सामने वाला जो मुझे ये गलत बता रहा है वो गलत है, उसको पता नहीं है। कभी भी ये नहीं आता दिमाग में कि हो सकता है मैं गलत हूँ, लगता है नहीं सामने वाला तो ये गुरु ही बेकार है, ये जो बता रहा है वही बेकार है। तो इसलिए अपना आराम से चेक करो, कभी जल्दबाजी मत करो गुरु लेने में। एक कबीर साहब का दोहा है, वो उसमें बोलते हैं कि जब तुम माटी का घड़ा भी खरीदने जाते हो तो उसको दो चार बार चटका के देखते हो, बोलते ना उंगली से उसको टक टक करके देखते हो कि कहीं टूटा तो नहीं है, कहीं से क्रैक तो नहीं है, पानी इसमें लेगा कि नहीं लेगा। तो बोलते हैं 30-40 उस समय तो और भी कुछ आनों का होता होगा, इतना सस्ता सा तुम घड़ा खरीदने जाते हो उसको भी चार बार चेक करते हो, तो गुरु को भी चेक करके बनाओ, ऐसे मत बनाओ। और एक चीज़ जो मैं भी कई बार बोलती हूँ कि गुरु को शिष्य से कुछ नहीं चाहिए होता, लेकिन एक्चुअली मैं सोच रही थी एक दिन ये बात सही नहीं है। गुरु बनता ही तब है जब शिष्य उसकी तरफ एग्रीड हो जाता है कि हाँ अब मैं तुमसे सीखने के लिए तैयार हूँ। तो गुरु को चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है? शिष्य का ट्रस्ट, कि ये मुझ पे अननेसेसरली डाउट नहीं करेगा, मेरी बातों को सुनेगा। गुरु कभी क्वेश्चन करने से मना नहीं करता, आप क्वेश्चन करो जितना मर्जी करो, उससे पूछो आपको जो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन एक पूछना होता है ट्रस्ट में कि हाँ मेरा सच में ये सवाल है, मुझे नहीं आती ये बात, और आप मुझे बताओ, और मुझे विश्वास है कि आप मुझे जो बताओगे वो सही जवाब होगा, चाहे मुझे ना समझ में आए। और एक सवाल होता है सिर्फ बस ऐसे ही दूसरे को दिखाने के लिए कि मुझे आता है तुम्हें नहीं आता, तो फ़र्क होता है कि कौन सा सवाल किया जा रहा है, और वो समझ में आ जाता है, गुरु को समझ में आता है कि आप किस इंटेंशन से सवाल पूछ रहे हैं। और फिर जब आप सवाल, और दूसरी चीज़ मैंने शायद पिछली बार भी ये बात बोली थी, अगर आप सॉल्यूशन लेने जाते हो, अगर आप बोलते हो मेरा ये प्रॉब्लम है, पहले आप एक घंटा अपनी कहानी सुनाओगे, वो बिल्कुल नहीं सुनानी चाहिए, दो लाइन में ख़त्म करना चाहिए, फिर भी आप सुनाते हो, कुछ लोगों से रहा ही नहीं जाता, उनको दो लाइन में बात करनी नहीं आती, फिर आप सॉल्यूशन मांगोगे, फिर आपको जो सॉल्यूशन दिया जाएगा वो आपको पसंद ही नहीं आएगा, आप फिर से शुरू हो जाओगे। तो अगर आपको सॉल्यूशन लेना ही नहीं है, अगर आपको सिर्फ अपनी ही बात सुनानी है, तो मत जाओ, मत करो, ना अपना टाइम वेस्ट करो ना उनका टाइम वेस्ट करो, कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ, आपकी ईगो को थोड़ी देर तसल्ली हो जाएगी, या आपको टेम्प्रेरी रिलीफ मिल जाएगा कि आपने एक घंटा अपना कचरा थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल दिया। यहाँ पर भी मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि हमें बहुत बार लगता है कि हमें किसी चीज़ की कोई अगर दुख है, परेशानी है, अगर हम 10 लोगों को बताएं, 20 लोगों को बताएं, 50 लोगों को बताएं, तो शायद वो कम हो जाएगा। वो कम नहीं होता है, वो बढ़ता है। ये हम पहले भी वैसे बहुत बार बात कर चुके हैं, इनफैक्ट एक सफ़रिंग वाला मेरा शुरू शुरू का वीडियो था सफ़रिंग में, उसमें भी ये बोला था कि हम जितनी बार अपनी प्रॉब्लम को रिपीट करते हैं, उतनी बार हम क्या कर रहे हैं, हमारे कान वो वापस से उतना ही स्ट्रेंथन होता है, वो कम नहीं होता। और कुछ लोग तो मैंने देखा है, मतलब उनको तो कोई मिलना चाहिए अपना दुखड़ा रोने के लिए, मतलब अगर आप उनको जानते भी नहीं हो, कुछ नहीं है, वो आपको बस मिलेंगे और मिलते ही शुरू हो जाएंगे। और कुछ लोग मुझे बोलेंगे, अरे बस हम ना किसी को नहीं बताते, आपको बता रहे हैं, फिर मुझे पता लगेगा उन्होंने उसको भी बताया, इसको भी बताया, हर किसी को जो कोई मिलता है उसको बताते रहते हैं अपनी कहानी, और उनको बस ये लगता है कि क्या चाहिए, सिंपथी चाहिए दूसरों से, या उनको एक अपना विक्टिमहुड वाला जो फीलिंग होता है ना कि हाय मैं बेचारी, मेरे साथ ये हुआ था, और देखो फिर उनको ये होता है, अरे उसने तो मेरे साथ बहुत सिंपथाइज़ किया, उसने बोला हाँ हाँ तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। अब यही चीज़ें करनी है तो प्लीज़ सोसाइटी में करो, यहाँ पे मत करो, एटलीस्ट स्पिरिचुअल ग्रुप्स में ये सब चीज़ें मत करो। आप जितनी बार रिपीट करोगे, आप सिर्फ स्ट्रेंथन कर रहे हो। स्पिरिचुअल में क्या होता है कि आप उसको देखो, आप उसके साथ रहो, आप समझने की कोशिश करो कि वो कहाँ से आ रहा है। हाँ, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि आप गुरु को मत बताओ, बताओ, ज़रूर बताओ, और वहाँ पे आपको ज़रूर बताना चाहिए कि सोल्यूशन आपको मिलेगा वहाँ पे आके। और जो सीरियस साधक होते हैं, जो सिंसियर होते हैं, गुरु उनकी ज़रूर सुनते हैं, उनका कचरा भी लेते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे तो बिल्कुल मत करो, बल्कि सोचो, एनालाइज करो कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों है, या उसको देखो, रहो उसके साथ, भागो मत, उसको एकदम निकालने की कोशिश मत करो, तो अपने आप चीज़ें समझ में आएंगी। आई होप ये लर्निंग, अनलर्निंग, रीलर्निंग का क्वेश्चन आंसर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन, ये अभी कुछ ही दिन पहले एक साधिका का फ़ोन आया था कि उनको ऐसा नहीं है क्रिया करते हुए, लेकिन हाँ कुछ दिनों से ऐसा लगता है रात में सोते हुए, लेटते हुए, कभी कभी ध्यान करते हुए भी, कि जैसे कोई पास में है, मतलब लिटरली उनको बिल्कुल ये फीलिंग होती है कि कोई है पास में, और बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा। और उन्होंने ये भी बोला कि थोड़ी देर के बाद जब वो डर जाती हैं और बिल्कुल सांस रोक के एकदम, या लेटी हैं तो भी, या बैठी हैं, और फिर थोड़ी देर बाद ऐसा भी फीलिंग होता है कि वो प्रेजेंस चली गई है, मतलब ऐसी आवाज़ भी कभी कभी फील होती है जाने की, और उनके जाने के बाद एक अलग तरह की खुशी होती है अंदर, एक जॉय होता है, एक आनंद होता है, लेकिन जब भी वो प्रेजेंस फील होती है तो हालत बहुत ख़राब होती है। ये बहुत लोगों के साथ होता है, और ये क्रिया योग के मार्ग में काफ़ी कॉमन है, ये कॉमन चीज़ होती है। तो पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये क्यों होता है। क्या होता है कि जैसे जैसे हम योग साधना करते हैं, जैसे जैसे हमारी एक केमिस्ट्री चेंज होती है हमारी बॉडी की, ओके, ये जो क्रिया है, ये जो ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, ये क्या कर रही है हमारे शरीर में, ये इसकी एक तरह से केमिस्ट्री चेंज कर रही है, उसकी सर्जरी कर रही है, आपके ब्रेन के कुछ सेल्स खुलने लगते हैं, जैसे जैसे आपके अंदर ज़्यादा प्राण ऊर्जा जाने लगती है, जैसे जैसे ज़्यादा ऑक्सीजन जाने लगती है, तो आपके जो कुछ, इसको हम ऐसा भी बोलते हैं कि जो एस्ट्रल बॉडी है वो थोड़ी सी एक्टिवेट होने लग जाती है। तो वो जब एक्टिवेट होती है तो आपके लिए ये 5 सेंसेस के अलावा भी यहाँ पर बहुत कुछ है, तो वो खुलना शुरू हो जाता है। इट इज़ लाइक कि हम एक सपोज़ एक कमरे के अंदर बंद हैं, जहाँ पे ना कोई खिड़की है, ना दरवाज़ा है, अंधेरा है, और हम अंधेरे कमरे में बंद हैं, और फिर एक दिन उस कमरे का हल्की सी खिड़की खुली और रोशनी आई, तो जब पहली बार अगर हम रोशनी आएगी तो हम डर जाएंगे, बड़ा नेचुरल है, क्योंकि हम अंधेरे से यूज्ड टू हो चुके हैं, हमें पता ही नहीं है कि अच्छा बाहर कुछ रोशनी जैसी भी कोई चीज़ होती है। कोई भी एक अननोन या न्यू एक्सपीरियंस होता है तो थोड़ा डर लगना बड़ा नेचुरल है, क्योंकि हमारा माइंड उसी तरह से बना हुआ है कि कोई इस तरह की नई चीज़ हो तो हमें वॉर्न कर दे ताकि हम अपने आप को सिक्योर कर सकें, अपने आप को बचाने के लिए। तो यहाँ पे जो भी लोग साधना कर रहे हैं, ये मैं बार बार बताती हूँ कि घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहली बात, क्योंकि आपकी एनर्जी रेज हो रही है इसलिए आपके पास कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। कोई भी अगर आपको ऐसा फीलिंग होता है वो नेगेटिव नहीं होता, बल्कि पॉजिटिव ही होता है। वो आप लोगों को ब्लेस भी करते हैं जो भी होते हैं, या हायर फॉर्म्स होते हैं, या कुछ आते हैं जो आपकी प्रेजेंस में भी रहना चाहते हैं। अगर वो आपके बराबर के हैं या हायर नहीं भी हैं, वो आपको हार्म करने बिल्कुल भी नहीं आते, तो कोई ऐसा नहीं आएगा। हाँ, आपके माइंड को थोड़ा सा यूज़ टू होना पड़ेगा कि इट इज़ पॉसिबल, और ये सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी शुरू में डरती थी, उसके बाद बिल्कुल आप कंफर्टेबल हो जाते हो। इट इज़ लाइक जब नया नया अननोन होता है तो आपको डर लगता है, बाद में आप कंफर्टेबल हो जाते हो इन चीज़ों से। तो ये मैं सभी के लिए बोल रही हूँ कि बिल्कुल भी डरिए मत। हाँ ठीक है, उस समय डर लग रहा है तो वही करना है जो मैंने उनको बताया कि प्रेयर करना है आपको बाबा जी को कि बाबा जी मुझे बहुत डर लग रहा है और ये है। और आप उनको भी, जो भी कोई प्रेजेंस है उनको भी ऐसा बोल सकते हैं, आप मेंटली बातचीत कर सकते हैं कि थैंक यू आप आए हैं लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, तो अभी प्लीज़ आप तब आइएगा जब मैं तैयार हो जाऊँ इसके लिए। आप ऐसा भी उनको बोल सकते हैं, वो सुनते हैं, वो आपके मन की बात, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपका मन वो पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो बिल्कुल भी डरिए नहीं, कुछ भी गलत नहीं होगा। वैसे भी हम लोग जब भी ध्यान करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो उससे पहले हम अपने सारे गुरुओं को नमन करके, उनको याद करके उनके साथ ही बैठते हैं, उनकी कृपा लेकर ही बैठते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो ये थे आज के प्रश्न। अगर किसी के और इनको लेकर ही और प्रश्न हो या कोई और प्रश्न हो तो ज़रूर पूछ लीजिए। पूजा ने लिखा है, सेम मेरे साथ भी हो रहा था, कुछ रिलेटिव्स ने सबसे कह दिया कि ये नॉर्मल नहीं है, भूत आता, इससे सबको डरा दिया। तो आपको रिलेटिव्स को बताना नहीं चाहिए था, कुछ क्या हुआ था आपको मुझे अलग से बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था और आप कौन सी साधना कर रहे हो। और ये चीज़ें प्लीज़ डू नॉट शेयर विद योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। बगला मुखी, अच्छा ये मुझे नहीं मालूम है, ये तो कुछ तंत्र, आई होप आपके कोई गुरु हैं पूजा जिनके अंडर आप ये साधना कर रहे हैं। नहीं तो प्लीज़ मेरी एडवाइस आपको इमिजिएटली ये होगी, ये सब मत करिए, बिना गुरु के मत करिए। अगर सब कुछ ठीक भी चल रहा है तो भी इस तरह की तंत्र साधनाएँ बिना गुरु के कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। फ़ायदा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। और ये आप अगर रिश्तेदारों को या दोस्तों को जो नहीं समझते उनको बताएंगे तो वो आपको कुछ एबनॉर्मल ही समझेंगे। लेकिन मैं ये सब, मुझे नहीं पता है ये इन तरह की साधनाओं का, आप मुझे मैसेज कर लेना एक बार बात करने ला, लेकिन मैं ये सब, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इनका। मैं यहाँ पे मैं क्रिया योग बताती हूँ, पर हाँ आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए, एक बार बात ज़रूर कर ली। पूजा ने लिखा है, ब्लैक मैजिक अगर फिज़िकल वर्ल्ड में रियल में किसी को इम्पैक्ट करती हो तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? अध्यात्म सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं है। आप अगर सोसाइटी में जाएंगे, बात करेंगे, लोग आपको 50 चीज़ें बता देंगे। अब ये बात हो रही है कि ये कौन सोच रहा है कि ब्लैक मैजिक हो रहा है, किसी को इम्पैक्ट हो रहा है। और अगर आप साधना में रहते हैं, जो मैंने पहले भी बोला, तो ये सब चीज़ें अगर सपोज़ एज्यूम करते हैं कि ये सत्य है, अगर वो सत्य है भी उसको भी एक्सेप्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी सिर्फ एक ही, आध्यात्मिक साधक की क्या एक डिज़ायर होती है, क्या उसकी डायरेक्शन होती है, कि उसे आध्यात्मिक प्रगति करनी है। और अगर उस प्रगति के लिए ये सब हो रहा है, होने दो। उसके बाद जो गुरु होते हैं, जो आपको गाइड कर रहे होते हैं और भी होते हैं, वो आपका इन चीज़ों से ध्यान रखते हैं। अगर आप सही मार्ग पे हैं और सही गुरु के अंदर हैं तो ये सब चीज़ें कुछ इम्पैक्ट नहीं होती। हाँ, जो लोग साधना करते ही नहीं हैं, संसार में हैं और फिर उनको कुछ ब्लैक मैजिक और ये सब चीज़ों में पड़े हैं, तो मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है उसका। पूजा ने लिखा है, मेरी फैमिली में बहुत है ये सब, कुछ लोग बहुत इम्पैक्टेड हैं इससे। मेरी आपको एक ही सलाह रहेगी पूजा, कि आप क्योंकि इस तरफ हो, इंटरेस्ट आपका है अध्यात्म की तरफ, मैं समझ सकती हूँ कि फैमिली का इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस बहुत होता है आसपास का, पर इससे निकलो बाहर, अध्यात्म को अपनाओ, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें अफेक्ट भी नहीं होगी और आपको समझ में आएगा। सिंस आपको एक अच्छी डायरेक्शन मिल गई है, आपको मार्ग मिल गया है, तो इन सब में मत पड़ो। और वही है, नहीं तो जो जिन लोगों को पता नहीं है, इम्पैक्टेड हैं, आपको भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, खुद तो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, आपको भी वहाँ लेकर जाएंगे, और ये होता ही है फैमिलीज़ में, ग्रुप्स में। स्वाति सेइंग, व्हेन यू आर फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर पाथ, दीज थिंग्स डोंट बॉदर और अफेक्ट यू, दे जस्ट डोंट एग्जिस्ट। एब्सोल्युटली, आई टोटली अग्री विद यू स्वाति। दैट इज़ व्हाई वन हैज़ टू कम ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज देर इज़ नो एंड टू स्टुपिडिटी इन द वर्ल्ड, देर इज़ नो एंड टू कन्फ्यूजन एंड थाउजेंड थिंग्स, नोबडी नोज वॉट इज़ राइट वॉट इज़ रॉन्ग। और हम जिन लोगों से कंसल्ट करते हैं ना, उनको भी नहीं पता होता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और हम कंसल्ट ही ऐसे लोगों को कर रहे हैं जो, फिर वही बात है कि हमारी बुद्धि से हमें लगता है कि ये लोग हमें सही रास्ता बताएंगे, और सही रास्ता बताने वाले लोग ही ऐसे होते हैं। तो अगर आपके गाइड्स ही गलत हैं, आपको जो डायरेक्शन देने वाले हैं या आप जिनसे एडवाइस लेते हैं वही गलत हैं, तो आपकी लाइफ में गलत ही होने वाला है। नीलूफर इज़ राइटिंग, आई डू हैव दिस फियर ऑफ अननोन प्रेजेंस विच आई फेल्ट सम टाइम बैक, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। यस नीलूफर, सो ग्लैड यू शेयर्ड दिस, दैट यस दीज अननोन प्रेजेंस आर फेल्ट, एज आई सेड, वेरी नॉर्मल, वेरी कॉमन, एंड दिस विल हैपन, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इनिशियली वन डज फील अ लिटिल स्केर्ड, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू बिकम कम्फर्टेबल विद दैम, एंड दे ओनली हेल्प यू, ट्रस्ट मी, दे हेल्प यू, दे even help you to make your meditation deeper. I mean, you know, they are happy to support. In fact, Osho has given a very nice thing which I have shared many times before. He says that in the ether there are very good spirits which are not able to take birth in the human form, and the reason why they are not able to take birth is they do not have enough high vibration wombs available. Okay, तो वो क्या बोल रहे हैं, मैं यहाँ पर हिंदी में बता देती हूँ सबके लिए। ओशो ने बोला है कि बहुत सारी अच्छी जो स्पिरिट्स बोलेंगे हम रहते हैं, वो मनुष्य जन्म नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि ऐसी माताएँ, ऐसे पेरेंट्स, ऐसे घर ही अवेलेबल नहीं होते जो उनकी ऊर्जा को मैच कर सकें। देखो, जब किसी को जन्म लेना होता है आपके घर में, तो उनकी जो एक वाइब्रेशन है वो आपकी वाइब्रेशन से कुछ ना कुछ मैच होना चाहिए। जैसे होता है ना, हम किसी एक ब्लड ग्रुप का दूसरे ब्लड ग्रुप में डालते हैं, वो मैच होना चाहिए, नहीं तो वो फेल हो जाएगा। ऐसे ही वाइब्रेशन का होता है। तो क्योंकि वो हाई वाइब्रेशन बीइंग्स हैं जो नहीं ले पा रहे, लेकिन वो क्या करते हैं, जो भी लोग साधना में लगे हैं और उनकी एक नेचुरली एक इच्छा होती है, डिज़ायर होती है कि वो हेल्प करते हैं, सपोर्ट करना, तो वो जब देखते हैं कि ऐसे लोग साधना कर रहे हैं, वो आके उनको ब्लेस करते हैं, गाइड करते हैं। ये बहुत सारे साधकों का अनुभव है, तो ये बड़ा एक नेचुरल प्रोसेस चलता है। सेम चीज़ नेगेटिव में भी चलती है कि बहुत सारी जो नेगेटिव स्पिरिट्स होती हैं, नेगेटिव बीइंग्स होते हैं, वो भी हैं। वो किन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं? जो लोग नेगेटिव होते हैं, जो लोग लो वाइब्रेशन होते हैं, लो वाइब्रेशन बीइंग्स की तरफ। जैसे कई लोग बोलते हैं कि अरे मुझे चोरी करनी नहीं थी, पता नहीं मैंने कैसे कर दी, मुझे रेप करना नहीं था, पता नहीं क्या हो गया, मुझे मर्डर करना नहीं था, पता नहीं क्या हो गया। तो अगर आप लो वाइब्रेशन हो, लो एनर्जी बीइंग हो, तो नेगेटिव फोर्सेस भी आपका इस्तेमाल कर सकती हैं, आपको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। सिमिलरली, जब आप साधक होते हो, हाई वाइब्रेटरी बीइंग हो जाते हो, तो दीज हाई वाइब्रेटरी बीइंग स्टार्ट सपोर्टिंग यू। Nilufar is saying, it could be my imagination also, in everyday life we imbibe so much baggage. Yes, that is true. There is a possibility that there may be, it could be an imagination, or actually it could be a presence. But over a period of time, that also becomes clear. That whether it was something you were imagining or it was really there. And as I wrote in the previous question, that this person who had approached me, she said that she used to feel a joy after that presence would go away. So that is another way of knowing if it was imagination or it was really somebody. Because this has been my experience as well, that when somebody is there, when I feel a presence, actually somebody is there, you know, for no reason at all, you just start feeling happy from the inside. It's like, you know, something very nice. It's समथिंग हैपन्स, यू जस्ट स्टार्ट फीलिंग गुड एंड जॉयफुल. सो दैट इज़ अनदर वे ऑफ चेकिंग इट. ऑल ऑफ यू हु हैव डन द हिरण्य गर्भ, हम लोगों का एक बुक है ना, कोर्स है हिरण्य गर्भ, वो जितने भी लोगों ने किया है आप लोगों को ध्यान होगा, उसमें एक चीज़ है कि जब आपको पॉजिटिव सिग्नल मिलता है तो उसका एक साइन होता है कि पॉजिटिव सिग्नल मिलने से आपके अंदर एक खुशी भी होती है. वो पॉजिटिव सिग्नल तो आपको पता लग जाता है कि हाँ ये पॉजिटिव सिग्नल है, एक एक्सपेंशन का फीलिंग होता है. तो वो भी वैसे ही होता है, उसी से रिलेटेड है. हाँ, एक और क्वेश्चन आया था, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि जैसे जैसे लोग साधना में आगे बढ़ते हैं तो उनका एक सवाल आता है कि अब हमारे जो फ्रेंड्स हैं पहले के, या कोलीग्स हैं या रिलेटिव्स हैं, अब उनसे मिलने का मन नहीं करता. सबसे वो लोग पार्टीज़ में बुलाते हैं, हमारा मन नहीं करता जाने को. वो फ़ोन करते हैं तो मन नहीं करता बात करने को. वो बोलते हैं हम आपके घर आ जाएं तो अंदर से ये नहीं होता कि हाँ आ जाओ. और कहीं पे जाना भी पड़ता है तो हम यू नो स्लाइटली फील आउट ऑफ प्लेस. तो ये चीज़, और फिर वो सवाल क्या आ जाता है कि क्या मैं एरोगेंट हो रहा हूँ ये सब करने की वजह से कि मैं साधना करता हूँ. इज़ इट माई एरोगेंस, या मेरा अहंकार है, या मैं इर्रिस्पॉन्सिबल हो रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए. ये सब सवाल आते हैं. ये आई एम श्योर आप सब लोगों ने भी, हम सब ने ये चीज़ क्रॉस की है, पास किया है. तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इट इज़ एब्सोल्यूटली नॉर्मल. और इनफैक्ट ये साइन है कि अब आपकी प्रोग्रेस हो रही, क्योंकि आपके इंटरेस्ट चेंज हो रहे हैं. आपको जो पहले चीज़ों में इंटरेस्ट होता था, उन बातों में इंटरेस्ट होता था, अब वो नहीं रहा उसके अंदर. तो अगर आपके इंटरेस्ट चेंज होंगे तो ऑब्वियसली आपको इन चीज़ों में मज़ा आएगा ही नहीं, वो बातों में आपका चेंज होना ही है. हर समय आप देखो, हमारे जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, नया करते हैं, हमारे कुछ लोग होते हैं जो हमारी लाइफ में रहते हैं, वो बदलते रहते हैं, कुछ बदलते रहते हैं. और यहाँ पे तो हम एक इतनी अलग दिशा में जा रहे हैं संसार से. असल में देखा जाए तो अध्यात्म, जब तक हम संसार, मतलब जो सिर्फ संसार में ही है, उसके लिए अध्यात्म को बिना उसमें घुसे समझना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा. लोग क्या सोचते हैं स्पिरिचुअल का मतलब, कि हाँ ये मेडिटेट करते होंगे. ज़्यादातर लोग तो सोचते हैं कि अगर मंदिर जाते हैं तो स्पिरिचुअल है. मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं, उनको पूछो कि स्पिरिचुअलिटी, तो वो बोलते हैं हाँ हाँ हम मंदिर जाते हैं, हम दिवाली पे मंदिर जाते हैं, होली पे मंदिर जाते हैं, या फिर हम टेम्पल्स, वी बिलीव इन गॉड, तो उनको लगता है वो स्पिरिचुअल है. कुछ लोग सोचते हैं कि वो कुछ मेडिटेशन आसन कर लेते हैं इसलिए स्पिरिचुअल है. कोई सोचता है उसने गाइडेड मेडिटेशन कर ली तो वो स्पिरिचुअल है. मतलब लोगों के बहुत सारे आइडियाज़ हैं. ना आप उनको ये बोल सकते कि आप गलत हो, क्योंकि वो सुनने को तैयार ही नहीं है, ऑब्वियसली आपको बताना भी नहीं है. ना आप उनकी हाँ में हाँ मिला सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि वो जो बात कर रहे हैं अब वो आपके साथ मैच ही नहीं होती है, तो अभी आप क्या बात करोगे उनसे. तो ये होना ही है कि आपको उनमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा. तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद एरोगेंस, इट इज़ जस्ट दैट यू आर आउट ग्रोइंग इट, सो डू नॉट वरी अबाउट इट. अध्यात्म में जब हम चलते हैं ये होने लगता ही है. कई बार बस ऐसा हो जाता है कि कुछ रिश्तों के साथ हमें रहना पड़ता है, निभाना पड़ता है कुछ, पर हम उसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं. यहाँ पे हर किसी को अपना एक डिसीजन लेना पड़ता है कि वो किन के साथ रखेंगे और किन के साथ नहीं रखेंगे. और दुनिया वाले आपको एरोगेंट ही बोलते हैं, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. अनागामी ने लिखा है, मुझे लगता है कि किसी तरह से निभा रहा हूँ. हाँ जी, निभाना पड़ता है. कुछ रिश्तों में हम उनको नहीं तोड़ पाते तो निभाने पड़ते हैं. बस वो कम से कम होने चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा भी निभाने लगते हैं ना तो वो भी निभते नहीं हैं, फिर वो टूट ही जाते हैं, फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी और ज़्यादा आ जाती है. तो एकदम मिनिमम.